एक बार मुझे एक बड़े स्कूल में शिष्टाचार के बारे में बच्चों को समझाने के लिए बुलाया गया। बच्चों के साथ जब हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया, सबसे पहले मैंने उनमें से सबसे सामने बैठने वाले कुछ बच्चों से पूछा, आपके इस क्लासरूम के सामने रोज एक महिला झाड़ू लगाती है, उसका नाम क्या है? उसको मालूम नहीं था। कई बच्चों से पूछा, किसी को भी मालूम नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा, आपके क्लास टीचर का नाम क्या है? सबको मालूम था। प्रिंसिपल का क्या नाम है? सबको मालूम था। लेकिन रोज वहां पर झाड़ू लगाने वाले औरत का नाम किसी को पता नहीं था। हमारे जीवन में कुछ मूल्य होते हैं, मूल्यों के अनुसार हम जानकारी प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार से आज हम पाठ सुनेंगे, अध्याय 23 से। मैं समझता हूं उसका संदेश अध्याय 23 वाक्य 23 में है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 23, प्रभु कई बार शास्त्रियों और फरीसियों को फटकारते हैं और उनको प्रभु एक मूल संदेश देना चाहते हैं। आप शायद बहुत कुछ करते होंगे ईश्वर के नाम से, लेकिन अगर न्याय, दया और ईमानदारी के लिए आपके जीवन में जगह नहीं है तो सब कुछ बेकार है। न्याय, दया और ईमानदारी, ये प्रारंभिक बातें हैं, प्राथमिक बातें हैं। न्याय, दया और ईमानदारी, अगर इन तीनों बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी प्रार्थना, हमारा आचरण, ये सब बेकार है। इन प्राथमिक प्रारंभिक बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, न्याय, दया और ईमानदारी। शायद फरीसी और शास्त्रियों की यही गलती थी कि उन्होंने न्याय और दया को ज्यादा महत्व नहीं दिया। संत याकूब के पत्र में अध्याय 2 वाक्य 13 से 17 में प्रभु का वचन हमें इसके बारे में समझाता है। संत याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्य 13 से 17, प्रभु का वचन कहता है, जिसने दया नहीं दिखाई है उसके साथ दया नहीं की जाएगी, परंतु दया न्याय पर विजय पाती है। जिसने दया नहीं दिखाई है उसके साथ दया नहीं की जाएगी, किंतु दया न्याय पर विजय पाती है। दया न्याय से भी बढ़कर है और ईश्वर का ये गुण है, ये दया ईश्वर का गुण है, दया और करुणा। इसलिए हम करुणा के प्रभु की तस्वीर लगाते हैं घरों पर। यह हमें यह दिखाते हैं, यह दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि हमें भी दया दिखाना चाहिए, हमें दया दिखाना चाहिए। आगे वही का वचन कहता है, यदि कोई ये कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने के लिए कपड़े हो और न रोज रोज खाने की चीज़ें। यदि आप लोगों में कोई उनसे कहे खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और पेट भर खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीज़ें नहीं दे तो इससे क्या लाभ। इस तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। अगर हमारे जीवन में न्याय, दया और ईमानदारी के लिए जगह नहीं है तो हमारा विश्वास निर्जीव है, हमारा विश्वास निर्जीव है, मरा हुआ है, सड़ा हुआ है। इसलिए प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि हमें सबसे पहले दया, न्याय और ईमानदारी पर ध्यान देना चाहिए। अगर हो सके तो आज दिन भर हम मत्ती 23:23 पर मनन चिंतन करें, इसको हमारे हृदय में संचित रख कि न्याय, दया और ईमानदारी के बिना हम क्रिस्तीय जीवन नहीं बिता सकते हैं। लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 11 से 18 में हम पढ़ते हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 11 से 18, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो, अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो, मैं प्रभु हूँ। तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण करो और ना उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और ना अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना ही अपने पड़ोसी को प्राण दंड दिलाओ, मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूँ। और उसी अध्याय के वाक्य 35 और 36 में प्रभु का वचन कहता है, तुम न्याय करते समय पक्षपात नहीं करोगे और नाप तोल आदि में कपट नहीं करोगे। तुम्हारा तराजू सच्चा हो, गेहूं और तेल के लिए तुम्हारे पाठ और नाप सही हो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। जो तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लाया, बार बार वो कहते हैं किसी के साथ पक्षपात मत करो, गलत काम मत करो। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 10 से 16 विधिवरण ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 10 से 16 यदि तुम अपने पड़ोसी को किसी भी प्रकार का कोई उधार दे रहे हो तो उसका बंधक लेने के लिए उसके घर के भीतर नहीं जाओगे। तुम बाहर खड़े रहोगे, जिसे तुमने उधार दिया है वह स्वयं बंधक तुम्हारे पास बाहर लाएगा। यदि वह आत्मी दरिद्र हो तो उससे प्राप्त बंधक अपने सोने के समय तक नहीं रखोगे, उसे सूर्यास्त के समय अपना बंधक वापस दिया जाएगा, जिससे वह अपनी चादर ओढ़कर आराम से सो सके और वह तुम्हें आशीर्वाद दे। यह प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में पुण्य होगा। बहुत बड़ी बात कही गई है। अगर गरीब से आप बंधक लेते हैं, उसको उधार लेते हैं और बंधक लेते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए वो पैसा वापस करेगा, गरीब के पास कुछ नहीं उसका चादर रहता है, तुम उसके चादर अगर ले जाओगे सूर्यास्त के पहले उसको वापस करो, और नहीं तो क्या होगा वो भी प्रभु बताते हैं। अगर हम दे देते हैं वो तुम्हें आशीर्वाद देगा, प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में पुण्य होगा, यह प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में पुण्य होगा। हम जानते हैं फादर लोग आशीर्वाद देते हैं, बिशप लोग आशीर्वाद देते हैं, प्रभु का वचन कहता है उस गरीब का आशीर्वाद तुम्हारे लिए पुण्य लाएगा। कभी कभी जब हम लोग किसी को कुछ देते हैं, कोई हमारे सामने आकर भिखारी लोग आकर हाथ पसारते हैं, हाथ बताते हैं, तो हमें उनको मदद करना चाहिए। जब हम मदद करते हैं कोई कोई भिखारी कहते हैं ईश्वर आपको भला करे, वो जो आशीर्वाद है चर्च में पुरोहित से जो आशीर्वाद प्राप्त है उससे भी बढ़कर है, प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वह तुम्हें आशीर्वाद दे, कंगाल व्यक्ति वो गरीब व्यक्ति, यह आशीर्वाद प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में पुण्य होगा। और आगे किसी अभागे कंगाल मजदूर का शोषण नहीं करोगे, चाहे वह तुम्हारा देश भाई हो या तुम्हारे किसी नगर में रहने वाला प्रवासी, उसने जिस दिन मजदूरी की है तुम उसी दिन उसे उसकी मजदूरी सूर्यास्त के पहले दे दोगे। वह दरिद्र है, वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि यदि वह तुम्हारे विरुद्ध प्रभु से दुहाई करेगा तो तुम दोषी माने जाओगे। अगर तुम किसी भी गरीब के विरुद्ध कुछ करते हो और वह गरीब प्रभु के समक्ष तुम्हारे विरुद्ध कुछ प्रार्थना चढ़ाएगा तो तुम्हारे ऊपर दोष लगेगा। तो हम ये शायद नहीं समझते हैं कि गरीब के आशीर्वाद, किस कंगाल व्यक्ति के आशीर्वाद और किसी कंगाल व्यक्ति के मन में हमारे विरुद्ध कुछ भावना है उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, यह प्रभु का वचन कहता है। प्रभु अगर को वह खुश होता है हमारे ऊपर आशीर्वाद आएगा, अगर वो निराश होता है उसको लगता है कि हमने उसके विरुद्ध कुछ किया है तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, हम दोषी माने जाएंगे। आइए इस मिसा बलिदान में हम इस बात को मत्ती के सुसमाचार के 23:23 को गहराई से हृदय में ग्रहण करें, इसको हमारे हृदय में संचित रखें। न्याय, दया और ईमानदारी ये प्रभु भक्तों के लिए प्राथमिक बातें हैं, प्रभु भक्तों के लिए प्रारंभिक बातें हैं।